था, रूप वही रूप नया।
गाथा में आज आप सुन रहे हैं सविंदर सिंह उप्पल की लिखी कहानी राक्षस। अगस्त के महीने में पाकिस्तान से निकलने के बाद पटियाला में जो कोठी हमने किराए पर ली उसका हुलिया बिगड़ा हुआ था। कुगृहणी की रसोई की तरह या किसी कबाड़ी की दुकान की तरह ऐसे लग रहा था जैसे मिट्टी से लथपथ इस बदकिस्मत कोठी की ओर किसी ने महीनों से आंख उठाकर भी ना देखा हो। जिस एजेंट ने हमें किराए पर मकान दिलाया था उसे पता चला कि जिस वजीर की ये कोठी है वो अब बड़ा वजीर बन गया है और उसे पटियाला में सरकारी कोठी मिल गई और वो उसी में रहता है। उसे वहां गए 2-3 महीने हो गए हैं। कोठी का कब्जा लेने के बाद सबसे जरूरी था उसकी साफ सफाई करवाना और कमरों को धुलवाना। नए होने के कारण हमें ये भी पता नहीं था कि इस इलाके के भंगी कहाँ रहते हैं। साथ वाली कोठी से पता चला कि इस कोठी के भंगी का क्वार्टर कोई आधा फलांग पर है। सो पूछता पूछता जब मैं भंगी के क्वार्टर पर पहुंचा तो देखा कि क्वार्टर बंद है। दरवाजा खटखटाने पर एक अति सुंदर गोरे भरे हुए चेहरे वाली युवती बाहर आई और अपरिचित को देखकर पहले तो थोड़ा सा झिझकी, फिर पूछा, क्या काम है सरदार जी? मैं उसका लंबा कद, चढ़ती जवानी और गालों पर ढुल ढुल पड़ती सेबों की लालिमा देख ठिठक गया और सोच में पड़ गया, क्या ये भंगी का ही क्वार्टर है या मुझे लोगों ने कुछ गलत बता दिया है? मैंने सोचा कि ऐसी हूर परी भंगी की भला भंगी के घर में कैसे हो सकती, पर उसके मैले कुचेले और घिसे फटे कपड़े और क्वार्टर के अंदर की गंध को देखकर लग रहा था कि ये भंगी का ही क्वार्टर है। मुझे अपनी ओर टकटकी लगाए देखकर वो कुछ और अंदर की तरफ हो गई और ऐसे लगा जैसे कह रही हो कि सुंदरता का क्या अमीरों ने ठेका ले रखा है, ये तो भगवान की देन है और जिस पर उसकी कृपा हो जाए। फिर उसने कहा, क्या आपको हमसे कोई काम है? और झटपट मेरे मुंह से निकल गया, जी नहीं, इस इलाके के भंगी का क्वार्टर कौन सा है? वो स्थिति को समझ गई और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उसने कहा, जी क्वार्टर तो यही है। इतना कहकर वो अंदर चली गई। 1-2 सेकंड के बाद एक काला सा बदशक्ल मर्द मुंह को पोछता हुआ बाहर आया। शायद वो अंदर से रोटी खाकर आया था। उसकी अमावस्या की रात सी शक्ल देखकर मैंने सोचा, यहां दिन रात का अनुपम मेल है। मेरे सूट टाई की ओर देखकर वो बड़े आदर से बोला, क्या सरदार साहब, क्या हुक्म है? मेरी हैरानगी अब काफी दूर हो चुकी थी। मैंने उसे सारी बात समझाई और बताया कि रोज कॉटेज के हम नए किराएदार हैं और कोठी की सफाई करवाना चाहते हैं। हुजूर, उस कोठी के तो हम ही भंगी हैं, अभी आते हैं सरकार। उसके हाथ जोड़ने और कहने के लहजे से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो कह रहा हो, वजीर साहब की कोठी खाली कर जाने के बाद हमें तो बड़ा नुकसान हुआ है, भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि कोठी फिर से आबाद हो गई। और मैं ये सोचता हुआ कोठी की तरफ चल पड़ा कि इस काले भंगी की वो गोरी लगती क्या होगी, शायद उसकी औरत या दूर पास की कोई बहन या भांजी हो। पर ये भंगियों के घर में भी ऐसी परियाम जन्म ले सकती है? इसे तो किसी अमीर के घर जन्म लेकर किसी अमीर लड़के की रानी बनना चाहिए था। यदि ये किसी अमीर की लड़की होती और मैं इसे देख लेता तो मैं इस हीरे को हर कीमत पर खरीद लेता। पर अब तो मुझे सब पता चल गया था। कुछ समय बाद ही भंगी और वो युवती दो झाड़ू उठाए कोठी के अंदर आ गए और गंदगी उठाने में लग गए। युवती ने झाड़ू लगाने से पहले अपनी चुन्नी से नाक को ढक ली, शायद इसलिए कि वो धूल उड़कर उसके मक्खन जैसे अंतर मन को मैला ना कर दे। दो दो मिनट के बाद वो अपने पैरों और कपड़ों को झाड़ती। ऐसे लग रहा था जैसे कि वो अपने सुंदर शरीर का बहुत ख्याल रखती है और गंदगी बुहारने के इस काम के बावजूद वो अपने शरीर को गंदगी लगने नहीं देना चाहती। उसकी शारीरिक हरकतों से ऐसा भी लग रहा था जैसे कि वो इस काम से नफरत करती हो, पर पेट के खातिर तो सब कुछ करना पड़ रहा है। शायद वो इस कटु सत्य को जानती थी कि इस दुनिया में अपने मर्जी का काम कुछ नसीब वालों को ही मिलता है। दूसरे दिन मर्द भंगी की जगह उसके साथ एक 10 साल की बदसूरत लड़की आई, जिसने कंधे पर मैले से भरी बाल्टी और हाथ में एक छोटा सा झाड़ू उठाया हुआ था। दूर से वे लोग ऐसी लग रही थीं जैसे कोई अति सुंदर रानी आगे आगे चल रही और उसके पीछे पीछे कोई नजर बट्टू नौकरानी जा रही हो, जिससे कि उसके चांद से मुखड़े को नजर न लग जाए। जब मुझे उनकी बातों से मालूम पड़ा कि उस यौवन से भरपूर लड़की का नाम मखनी है, तो मैं सोच में पड़ गया। उसके पिता ने शायद उसके मक्खन से कोमल गोरे शरीर को देखकर ही उसका नाम मखनी रखा होगा। फिर मन में ही मैं सुंदरता की परख करने वाले और कद्रदान उसके पिता को दाद दिए बिना रह न सका। सुंदरता व गुणों के अनुरूप नाम रखना भी तो किसी ना किसी को तो आता ही है। बहुत से लोग तो किसी के सुंदर नाम को सुनकर ही उसे प्यार करने लग जाते हैं। जब मेरी पत्नी ने धरती पर उतरे उस चांद के टुकड़े को आंगन में झाड़ू लगाते हुए देखा तो सहसा उसके मुंह से निकल गया, हे राम, हे परमात्मा, अरे तुम कितने बेअंत हो, हाथ लगाने से मैली हो जाने वाली सुंदरी को ऐसे गंदे काम करने पड़ रहे हैं। मेरी तरह सुंदरता की कद्र करने वाली मेरी पत्नी को भी मखनी धीरे धीरे अच्छी लगने लग रही थी। देखकर मैं प्रसन्न हुआ और ये सोचते हुए कि एक और हमदर्द से मैं मखनी के बारे में बात कर सकूंगा। कुछ दिनों में ही मेरी पत्नी ने अपने कई पुराने सूट मखनी को दे दिए और मुझे बताया कि मखनी के माँ बाप मर चुके हैं और ये दोनों लड़कियां उस मर्द भंगी की बहनें हैं। मखनी की भाभी को बच्चा होने वाला था, इसलिए वो खुद काम पर नहीं आ सकती थी। मखनी का भाई उसके जवान और सुंदर होने के कारण दूर के मोहल्ले में खुद जाता था और मखनी तथा छोटी बहन को साथ की कोठियों में काम करने के लिए भेजता था। उसके भाई की बातों को सुनकर मैं ये सोचे बिना रह न सका कि इस दुनिया में बहुत सुंदर और कीमती वस्तुओं का मालिक होना भी आदमी के लिए कई बार जान का खतरा बन जाता है। हमें इस कोठी में आए अभी 20-25 दिन ही हुए थे कि एक रात सारे पटियाला में हल्ला मच गया। कोई इधर उधर भाग रहा था तो कोई उधर भाग रहा था। मिनटों सेकंडों में गोलियां चलने की आवाजें आने लग गई। पास के थाने से पता चला कि पाकिस्तान से आई एक गाड़ी में मुर्दा और जख्मी शरणार्थियों को देखकर सिखों और सिंधी हिंदुओं के जोश का प्याला छलक पड़ा है और उन्होंने नरदाना चौक के लोग के दफ्तर मुसलमानों के मोहल्ले पर हल्ला बोल दिया। मुसलमान हिंदू सिखों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। सारी रात ठाए ठाए की आवाज आती रही। सुबह का प्रकाश होते ही लोगों ने देखा कि सभी तरफ फौजी सिपाही गश्त लगा रहे थे। सारे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। अब रोज ही सुना जाता था कि उस कोने में लड़ाई हो रही और उस मोहल्ले के मुसलमानों को लूटा जा रहा है। क्या शरणार्थियों और क्या स्थानीय निवासियों सभी इधर उधर ऐसे घूम रहे थे जैसे उन्होंने पाकिस्तान के मुसलमानों द्वारा हिंदू सिखों पर किए गए अत्याचारों का बदला यहाँ के बेकसूर मुसलमानों से लेने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उनका कसूर यही था कि यहाँ के मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमानों के मजहब में विश्वास रखते हैं। कसूर किसी का और बदला किसी से, ये इंसाफ था उन हिंदू सिखों का जो धर्म के जोश में इधर उधर भाग रहे थे। उनकी हरकतों से ऐसा लग रहा था जैसे इंसानियत पंख लगाकर उड़ गई हो और ये सारी गड़बड़ी कुछ गुंडे ही कर रहे थे। क्या यहां और क्या वहां, शरीफ आदमी तो दोनों जगह ही जान माल और इज्जत की चिंता में था। मखनी और उसके भाई जान को खतरा तो था नहीं क्योंकि वह हिंदू थे, फिर भी उन सभी ने अपने दाएं हाथों में लोहे के कड़े डाल लिए थे जिससे कहीं फंस जाने की अवस्था में वे इस निशानी से वहशी हो चुके हिंदू सिखों को बता सके कि वे हिंदू हैं, मुसलमान नहीं। विशेष रूप से मखनी को इस खूंखार वायुमंडल से बहुत डर लगने लगा था। वो जानती थी अमन के समय में कानून के डर से शरीफ बने हुए लड़के उसकी ओर आंख फाड़ फाड़ कर देखते थे और कानून की परवाह ना करने वाले बदमाश तो कुछ ना कुछ बकवास करने से बाज नहीं आते थे। और अब तो कानून की किताबों को अलमारी में बंद करके ताले लगा दिए गए थे। मखनी अब अंधेरे में कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी। सड़क के दूसरी ओर हमारी कोठरी के सामने एक मस्जिद थी जिसे उस ओर के मोहल्ले के बचे खुचे मुसलमानों के लिए सरकार ने कैंप का रूप दे दिया था। वहां रात दिन चीख चिल्लाहट मची रहती थी। किसी से उसका प्यारा पति छीन लिया गया था, किसी की नौजवान कुंवारी लड़की का कुछ पता नहीं चल रहा था और किसी बदकिस्मत माँ का इकलौता बेटा नेजों से छलनी कर दिया गया था। कई जख्मी निढाल पड़े थे, किसी की दाई बांह काट दी गई थी जिससे सारी उम्र वो कुछ कर ना सके, किसी के पैर काटकर उसे चलने से लाचार कर दिया गया था और किसी के दोनों हाथ काट दिए गए थे जिससे वो कुछ खाने पीने के लिए दूसरों की मिन्नतें करता रहे। उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने कुछ फौजी सिपाहियों को वहां ड्यूटी पर लगा दिया। उन्होंने मस्जिद के बाहर अपना एक बड़ा सा तंबू गाड़ दिया था। उनकी इस दुर्दशा को देखकर मेरी माताजी को उन पर बहुत दया आई, जबकि हमारे साथ भी ऐसा ही जुल्म हुआ था। माताजी ने नौकर से कहकर रात को बहुत सा खाना बनवाया और नौकर को खुदा के बदनसीब लोगों में रोटी बांट आने के लिए कह दिया। रोटियों का टोकरा देखकर सभी का मन हुआ कि चीलों की तरह झपट्टा मारें, पर एक दो समझदारों के मना करने पर भूख से व्याकुल होने के बावजूद किसी ने रोटी स्वीकार नहीं की। मनुष्य को मनुष्य पर विश्वास नहीं रहा था। नौकर सारी बात भाग गया। उन्हें यह डर था कि रोटियों में कहीं जहर ना हो, जैसा कि उन दिनों खाने पीने की चीजों में आम तौर पर डाल दिया जाता था। नौकर ने झट रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में डाला। जैसे ही उन्हें रोटियों के ठीक होने का विश्वास हो गया, वे गुड़ पर आई मक्खियों की तरह रोटियों पर झपट पड़े। इससे जोर से हल्ला मच गया। नौकर ने अभी थोड़ी सी रोटियां बांटी थी कि एक सिपाही ने उसे दबोच लिया। ओ आदमताई के बेटे, कौन है तू? वो सिपाही नौकर को पकड़कर हमारी कोठी में ले आया। माताजी को देखते ही वो सिपाही किसी कौमी शान में बोला, इसी मजहब के लोगों ने आपको बुरी तरह से पाकिस्तान से निकाला और आज आप उन्हीं लोगों पर दया दिखाकर रोटियां बांट रही हैं। आपको कुछ तो सोचना चाहिए। हम आप लोगों को ही बदला ले रहे हैं यहां। नहीं तो इन्होंने हमारा बिगाड़ा ही क्या है? उस सिपाही ने कौमी जोशी में यह सारा भाषण एक सांस में दे दिया। ये ठीक है, पर बेचारों को भूखा मारना भी तो ठीक नहीं। फिर हमें भी तो किसी मुसलमान ने जान पर खेल कर बचाया था, माताजी ने वैसे ही दया दिखाते हुए कहा। पर उस सिपाही पर कोई असर नहीं हुआ। वो नौकर को कोठी के अंदर धकेलता हुआ बोला, अबे चला जा अंदर, नहीं तो गर्दन मरोड़ दूंगा। ये कह वो नथुने फुलाता तंबू की तरफ चला गया। तंबू के पास जाकर उसने देखा उसके सभी साथी गप्पे हाँक रहे थे। नथु सिंह कह रहा था, भाई भगवान करे ऐसी गड़बड़ सदा ही चलती रहे। अरे बहुत कुछ मिल गया है क्या? धर्मचंद ने जानने के विचार से उसकी तरफ देखते हुए कहा। और क्या भैया, बहुत समय से इच्छा थी कि एक रेडियो ले लें, कुछ रिकॉर्ड सुनने की भी इच्छा थी, पर तनख्वाह से तो साली रोटी भी नहीं चलती। हम तो आज सुबह एक घर से बंदूक का डर दिखाकर रेडियो उठा लाए हैं। नथु सिंह ने बड़े गर्व से कहा, जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ा पुण्य का काम किया हो। हाँ ऐसे तो बहुत मौज हो रही है, तेरी भाभी रोज सूट सूट करती रहती थी। मैं कल रात एक मुसलमान के घर में जा घुसा, ससुराल सूटों से भरा हुआ ट्रंकी उठा लाया। बख्शी सिंह ने मूछों को ताव देते हुए कहा, हमें तो भैया सिलाई मशीन की बहुत कमी महसूस हो रही थी, तो हम एक घर से उठा लाए, भगवान की कृपा से छह बच्चे जो हुए। धर्मचंद ने बाकी साथियों की हां में हां मिलाते हुए कहा। नुकसान तो उन शरणार्थियों का हुआ और फायदा हम गरीबों का। पर सुना नथु सिंह कोई रसीला माल भी मिला कि नहीं? बख्शी सिंह ने बातों को रोचक मोड़ देते हुए कहा, माल चखा तो बहुत है, पर यार अभी कोई ससुरी मतलब की मिली नहीं। आजकल औरतों की कोई कमी है, जिसे चाहो पकड़ लो। धर्मचंद ने इस तरह के हालात पर खुश होते हुए कहा। फिर नथु सिंह ने दूर पहरे पर खड़े प्रहलाद सिंह की तरफ देखते हुए कहा, ओ प्रहलाद सिंह, अरे आजा इधर, इन ससुरों को कोई नहीं छेड़ता। नहीं यार, अभी एक शरणार्थी का नौकर इन मुसलमानों में रोटी बांटने आया था, पता नहीं ये शरणार्थी किस मिट्टी के बने हैं। प्रहलाद सिंह ने कुछ पास आकर अपने साथियों से कहा, और नथु सिंह ने मस्जिद के बाहर 1000 वाट के बल्ब की रोशनी में देखा एक अति सुंदर युवती अकेली जा रही। उसे देखते ही उसकी लार टपकने लगी। उसने बख्शी सिंह को कचोटते हुए कहा, भाई बख्शी सिंह कैसी बाकी युवती है, सच ये तो मलाई है मलाई। बिजली की तेज रोशनी में उस युवती के दिपदिपाते हुस्न के नशे में बख्शी सिंह ने जवाब दिया, ये मखनी थी जो दाई को बुलाने जा रही थी, क्योंकि उसकी भाभी को अचानक प्रसव पीड़ा होने लग गई। उसका भाई खर्चा पूरा करने के लिए फालतू 4 पैसे कमाने के विचार से सरकारी ट्रकों पर रात रात मुर्दे लादने के लिए गया हुआ था। पलक झपकते ही नथु सिंह और बख्शी सिंह अकेली मखनी पर झपट पड़े और उसके मुंह को बंद कर तंबू में ले आए। मखनी मछली की तरह तड़प रही थी। वो रोई चिल्लाई, पर किसी ने उसकी फरियाद नहीं सुनी। मखनी ने बहुत कहा, मैं हिंदू हूं, ये देखो मेरा लोहे का कड़ा, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। बल्कि नथु सिंह ने कहा, तो हिंदू है या मुसलमान क्या फर्क पड़ता है, आजकल इन बातों को कौन देखता है। क्यों भाई बख्शी सिंह, और क्या? बख्शी सिंह ने करीब आकर मखनी के हुस्न की प्रशंसा करते हुए कहा। मखनी ने खुद को किसी फाकता की तरह राक्षस के हाथों में जकड़ा हुआ महसूस किया। धर्मचंद ने मखनी को दिन में झाड़ू धोते हुए कई बार देखा था। उसने उसे पहचानते हुए कहा, अरे ओ नथु सिंह, अरे ये तो भंगन है, क्यों धर्म भ्रष्ट कर रहा है। ओए, अब तुझे क्या पता, हमारे गुरुओं ने जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं रखा है। उसकी दबी सिसकियों से बहुत देर तक वायुमंडल कांपता रहा। फिर पता नहीं किस समय सिसकियां बंद हो गई। अभी आप सुन रहे थे सविंदर सिंह उप्पल की लिखी कहानी राक्षस। गाथा में इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत किया था निधि मिश्रा ने।